ओम शांति। मनुष्य के मन में पहली जिज्ञासा ये रही कि मैं कौन हूं, को हम संस्कृत में कहते हैं को हम। मैं कौन हूं, इस जिज्ञासा का प्रति उत्तर विभिन्न ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने चिंतन किया। हर एक ने अपना अपना उत्तर दिया। को हम, इसका उत्तर दिया कि सो हम, ब्रह्मो हम, शिवो हम, ये सब प्रत्युत्तर देने का मतलब ये हुआ कि हरेक ने अपना अपना चिंतन सुनाया। सभी मिलकर एक जवाब नहीं हुआ। तो हमें इसका एक उत्तर पाना है। अब अनेक उत्तर हुए, विभिन्न उत्तर हुए, कोई एक ग्रंथ की रचना नहीं हो पाई, इसलिए अनेक शास्त्र बने, अनेक ग्रंथ बने, अनेक संप्रदाय बने। आज हम देखते हैं कि आपस में जब हम मिलते हैं तब भी हम यही पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका सही परिचय क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कहते हैं कि हम अपना शारीरिक और सांसारिक परिचय देते हैं। हम कहते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इस प्रश्न के जवाब में हम कहते हैं कि मैं देह हूं, देह अभिमानी हम रहते हैं। हमें अपने शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं मिसिस फलानी हूं। हम अपना नाम बताते हैं, फोन में जब बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं मिस्टर फलाना हूं। पता है मैं किसका बेटा हूं, हम अपना नाम रूप बताते हैं। मैं सुंदर हूं, साधारण हूं। मैं काला हूं, गोरा हूं। हमें अपने नाम रूप आयु की कॉन्शियसनेस रहती। मैं श्याम हूं, मैं सुंदर हूं। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। इस प्रकार हमें अपने नाम रूप रंग की कॉन्शियसनेस रहती। कई बार अपने आयु की कॉन्शियसनेस रहती। हम कहते हैं कि मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं, और इसी कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि ये युवा है, ये बूढ़ा है। इसी प्रकार हमें अपने एजुकेशन की, हमें अपने ऑक्यूपेशन की, अपनी डेजिग्नेशन की कॉन्शियसनेस रहती है। हम अपनी एजुकेशन के अभिमान में आते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आईटी पढ़ा हुआ हूं, मैं व्यापारी हूं। इस प्रकार हम अपने कॉन्शियसनेस में रहते हैं। हमें अपने ऑक्यूपेशन की गरिमा रहती है। मैं ऑफिसर हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं व्यापारी हूं, शिक्षक हूं। इस प्रकार अपने ऑक्यूपेशन का अभिमान रहता है। हमें अपने डेजिग्नेशन का अभिमान रहता है। हम कहते हैं कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ, चीफ ऑफिसर हूँ, मैं चीफ सुपरिटेंडेंट हूँ। हमें अपने डेजिग्नेशन का अभिमान रहता है। हम कह सकते हैं कि दिन भर के अनेक कर्म जो करते हैं, अपने नाम रूप रंग आयु एजुकेशन डेजिग्नेशन ऑक्यूपेशन के अभिमान में रहकर करते हैं। हम कह सकते हैं कि हम देह अभिमान में आ गए हैं। हमें अपना पूरा अभिमान हो गया है। हम भौतिकवादी भोगवादी बन गए हैं। हम अपने दिन भर के सब कर्मों को देखें तो कोई न कोई देह अभिमान में हम आ गए हैं। कुछ एक कर्म में हमें अपने जाति ज्ञाति का अभिमान आ गया है। हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं। हम कोई न कोई अपने जाति ज्ञाति के अभिमान में रहते हैं। हमें अपने धर्म का अभिमान है। हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। हमें अपने धर्म का अभिमान हो गया है। इवन भाषा का अभिमान, प्रांत का अभिमान, हमें अपनी नेशनलिटी का अभिमान आ गया है। देह से संबंधित लगभग सभी बातों का हमें अभिमान आ गया है। ये अगड़ी जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति के हैं, ये ऊंचे कुल के हैं, ये नीचे कुल के हैं, ये भारतीय हैं, ये अमेरिकन हैं, जैपनीज हैं, चाइनीज हैं। हमें अपने नेशनलिटी का अभिमान आ गया है। इस प्रकार से देह से संबंधित लगभग सभी बातों का अभिमान आ गया है। हमारे दिन भर के 24 घंटे हमें अपने कर्म को देखें तो हमारे 12 घंटे 50% टाइम खाने में, सोने में, नहाने धोने में ही खर्च होता है। 50% टाइम खाना पीना, सोना, नहाना धोना, इसी में खर्च होता है। बाकी रहे 12 घंटे, हमारा कितना घंटा नौकरी धंधे में खर्च होता है। हमारे 8-10 घंटे नौकरी धंधे में, उसके लिए आने जाने में खर्च होता है। माना 35% टाइम हमारा नौकरी धंधे में आने जाने में खर्च होता है। बाकी रहे 2-4 घंटे वो टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब मनोरंजन के साधनों का उपयोग करने में रहता है। लैपटॉप, आईपैड उपयोग करने में हमारा टाइम खर्च होता है। माना प्रतिदिन के 24 आवर्स खाना पीना, नौकरी धंधा, कंप्यूटर, मोबाइल में ही खर्च होता है। हम भोगवादी बन गए हैं, हम भौतिकवादी बन गए हैं। इससे सिद्ध है कि हमारा जीवन ऐशो आराम में खर्च हो रहा है, देह अभिमान में खर्च हो रहा है। यहां जब आप साइलेंस में आए हैं तो हमें 1 मिनट शांति से बैठकर सोचना है कि सचमुच मैं कौन हूं। अगर हम अपने आप को सोचते हैं तो हमें उत्तर आता है कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? शरीर वास्तव में क्या है? हमें मेडिकल साइंस ने अच्छी तरह से बताया है कि हमारा शरीर हड्डी, मांस, चमड़ी और लहू से बना हुआ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं कि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। प्रकृति के 5 महाभूत हैं, अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। इन 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। और शरीर छोड़ देते हैं, शरीर मृत्यु होता है तो हम कहते हैं किसी की मृत्यु पर संस्कृत में कहा जाता है कि पांच तत्वों का बना शरीर पुनः पांच तत्व में मिल जाता है। पंचत्वम गतः, मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। तो हमें स्पष्ट है कि शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है और पुनः पांच तत्व में मिल जाता है। मानव शरीर प्लस आत्मा मिलाकर जीवात्मा ह्यूमन बींग कहा जाता है। मानव शरीर ह्यूमन बॉडी हम इन आंखों से देख सकते हैं। ये ह्यूमन बॉडी स्थूल है, प्रकृति से बना हुआ है, पांच तत्वों का बना हुआ है। परंतु शरीर प्लस आत्मा मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, जीवात्मा कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग मानव शरीर प्लस बीइंग जीवात्मा मनुष्यात्मा कहा जाता है। ये चैतन्य शक्ति आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, वो अति सूक्ष्म है। इनको वैज्ञानिक कितना भी प्रयास करते हैं परंतु ह्यूमन बीइंग को, बीइंग पार्ट को हम नहीं देख पाते हैं। जिसको सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, साइकोलॉजी में हम उनको साइकी कहते हैं। जब तक आत्मा शरीर में है हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है, तो स्थूल शक्ति, भौतिक शक्ति शरीर फिजिकल पावर है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। तो फिजिकल शक्ति माना क्या? देखने में साधन आते हैं, देखने में ये बल्ब आता है, देखने में ये ट्यूब आती है, देखने में ये पंखे आते, देखने में ये लैपटॉप आता है। परंतु ये साधन काम कब करते हैं? ट्यूब लाइट कब देती है? बल्ब प्रकाश कब देता है? पंखे जब उसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है तब चलता है। तो ये साधन देखने में आते हैं परंतु इलेक्ट्रिक पावर है, बिजली की शक्ति है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, परंतु वो ही प्रकाश के रूप में, गर्मी के रूप में और शक्ति के रूप में अनुभव होती है। बिजली नहीं दिखाई देती परंतु वो ही साधनों में गर्मी के रूप में, प्रकाश के रूप में कार्य करती है। तो शरीर साधन है, इन साधनों के द्वारा शरीर कार्य करता है और हम इलेक्ट्रिक पावर है, चैतन्य शक्ति है, जो इन साधनों द्वारा, शरीर रूपी साधन द्वारा कार्य करते हैं। तो शरीर एक भौतिक शक्ति है। चैतन्य शक्ति क्या है? हम सोचते हैं, बुद्धि निर्णय शक्ति है, और कर्म का प्रभाव संस्कार कहा जाता है। हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, लोगों की भलाई के, तो कर्म हम करते हैं, हमें उसका अनुभव भी होता है। दूसरों के लिए हमें सहानुभूति होती है, किसी के दुख दर्द कुछ भी होता है तो हमें सहानुभूति सिंपथी होती है। हमें कोई सुंदर स्थान देखकर आते हैं, अभी आंखों के सामने वो सुंदर स्थान नहीं है, परंतु उस स्थान की देखी हुई सुंदरता हमें बार बार याद आती है। आंखों के सामने तो वो दृश्य नहीं है, हम वापस घर आ गए हैं, पर देखी हुई सुंदरता हमें बार बार याद आती है। हम कोई ट्रैवल करते हैं, फिर पाने की इच्छा होती है, तो ये स्मृति, इच्छा, सहानुभूति, कर्म, विचार, निर्णय, कर्म का प्रभाव, दुख का अनुभव, ये किसको होता है? किसको होता है? चैतन्य शक्ति आत्मा को होता है। तो ये सब चैतन्यता के लक्षण है। तो भौतिक और चैतन्य शक्ति मिलकर ह्यूमन बीइंग, मनुष्यात्मा, जीवात्मा बनता है। तो हम अध्यात्म का स्वयं के बारे में प्रथम सत्य हमें यही समझना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, न कि ट्राइंगल हूं, स्क्वायर हूं, षटकोण हूं, आयताकार हूं, लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। और शरीर धारण करने के बाद आत्मा यहां भ्रुकुटी में निवास करती है। मस्तक शरीर का कंट्रोलिंग ऑफिस है, आत्मा चूंकि कंट्रोलर है इसलिए उसको मस्तक में दिखाते हैं। ये सरफेस पॉइंट है। वास्तव में आत्मा मस्तक के बीच पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच रहती है। ये सरफेस पॉइंट है, यहां हम तिलक करते हैं। ये भक्ति की यादगार है कि ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में स्थित होकर इस शरीर का संचालन करती है। जब कोई धार्मिक प्रसंग होता है, मांगलिक प्रसंग होता है, तो हम बच्चों को, बूढ़ों को, युवाओं को, सबको मस्तक में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। अक्षत माना एक अर्थ चावल होता है और एक अर्थ शब्दार्थ उसका है, अक्षत माना जिसका क्षत नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, अविनाशी आत्मा को ज्ञान कुमकुम से रंगना है, ये इसका मतलब होता है। अविनाशी आत्मा को ज्ञान कुमकुम से रंगना है। तो आत्मा ज्ञान कुमकुम से रंग जाती है, उसका निशानी है, यहां हम अक्षत कुमकुम लगाते हैं। आत्मा और शरीर की तुलना की है। शरीर एक मोटर कार है, आत्मा ड्राइवर के समान है। चाहे ड्राइवर 24 घंटा दिन रात मोटर कार चलाता है, फिर भी वो अपने आप को मोटर कार नहीं समझता है। उसको स्पष्ट है कार अलग है, मैं ड्राइवर इस कार से अलग हूं। ड्राइवर का खाना अलग है, मोटर का खाना पीना पेट्रोल डीजल अलग है। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं, मैं इस मकान का मालिक हूं। हम इस हॉल में बैठे हैं, हम समझते हैं कि ये हॉल अलग है और हम इसमें बैठे हैं। आप सोफा कार पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं। हमें स्पष्ट है कि हम ये सोफा कार नहीं है, हम कुर्सी नहीं है। अगर हम इस कुर्सी से, सोफा से अटैच हो जाएं, इससे इसके सहित चलना चाहें, तो इजी रहेगा या मुश्किल रहेगा। हम इस शरीर से अटैच हो जाएं, तो उठकर चलकर जा नहीं सकते हैं। जैसे ही हम इनसे डिटैच हो जाएं, तो इजीली चल के जा सकते हैं। आत्मा एक्टर है, शरीर ड्रेस है। हम शरीर नहीं हैं और हम वैरायटी रोल्स जो प्ले करते हैं वो नहीं हैं। हम आत्मा एक्टर हैं। तो ना शरीर ड्रेस से अटैच होना है, ना वैरायटी रोल से प्ले कर होना है। हम कहते हैं कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इनका पिताजी हूँ, तो वो हम रोल से अटैच हो गए ना। हमें इन रोल से अटैच नहीं होना है। हमें ड्रेस अपने रोल अनुसार हम ड्रेसअप होते हैं। कोई एक्टर फिल्म में राजा बनेगा और वो इस अभिमान में चलेगा कि मैं राजा हूँ। घर आकर भी सबको यही कहेगा कि मैं राजा हूँ, तो इसकी कौन मानेगा? हा? उसकी पत्नी भी कहेगी कि तुम फिल्म में एक्टर हो, राजा हो, परंतु यहाँ घर में राजा नहीं हो। ये आपका ड्रेस है, ये आपका रोल है, आप राजा नहीं हैं। अमिताभ बच्चन कुली फिल्म में कुली बनता है। अगर वो कहे कि मैं कुली हूँ तो कोई मानेगा? नहीं। उसको कहेंगे तुम फिल्म में कुली थे, यहाँ कुली नहीं हो। कभी हीरो एक्टर अनेक प्रकार के रोल प्ले करते हैं। कोई राजा बनता है, कोई इंस्पेक्टर बनता है, कोई पागल शराबी बनता है। तो मैं शराबी हूँ, मैं पागल हूँ, मैं कुली हूँ, ऐसे वो नहीं कहेगा। वो फिल्म में कुली का रोल प्ले किया, फिल्म में शराबी बना, फिल्म में वो पागल बना, लेकिन वास्तव में वो फलाना एक्टर है। गीता शास्त्र में कहा है कि शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है, रथवान है। तो गीता में आत्मा के लिए दो शब्द यूज किए हैं, रथी और देही। देह माना शरीर, देही माना आत्मा। जब आत्मा निकल जाती है, बॉडी डेड हो जाती है, और उस डेड बॉडी को उठाकर सब ले जाते हैं, तब कहते हैं फलाने की अर्थी उठी। अर्थी माना जिसमें रथी नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहा जाता है। आत्म पंछी कहते हैं, हंसला हालो ने हवे मोतीड़ा नहीं रे मारे, आ गुजराती गीत छे। तो इस प्रकार शरीर पिंजर है, आत्मा को पंछी हंस कहा जाता है। इस प्रकार ये कंपैरिजन किया है और बीचों बीच देखिए रथ के ऊपर शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। जब शरीर आत्मा छोड़ देती है तब उनको हम बहन पत्नी डेड बॉडी को नहीं कहते हैं। तो शरीर रूपी रथ स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा रथी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्त्री हूँ ये कहना गलत है, मैं पुरुष हूँ ये कहना गलत है। परंतु स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो शरीर हम नहीं हैं, हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। परंतु हम इतने बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं जो कहने लगे हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। शरीर से अलग आत्मा हूं मैं, हम नारी शक्ति कहते हैं, स्त्री शक्ति कहते हैं, परंतु नारी कौन है और शक्ति कौन है? शरीर स्त्री है, शरीर नारी है, परंतु मैं आत्मा शक्ति हूं, मैं आत्मा पुरुष शक्ति हूं। तो शरीर से भिन्न मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। शरीर वास्तव में क्या है? ये क्या है? हाथ, इसको हम हाथ कहते हैं, पर ये हाथ शरीर से अलग है ऐसे भी नहीं कहेंगे। तो आत्मा शरीर पांच कर्मेंद्रियों का एक सेटअप है। शरीर पांच कर्मेंद्रियों का एक समूह है, आंख, कान, मुख, नाक और हाथ। ये पांच कर्मेंद्रियों का जिस्मानी समूह है। जब आत्मा शरीर में है तब ये समूह हिलचाल करते, ये चैतन्य बनता है, परंतु शरीर जैसे ही छोड़ देता है, आत्मा निकल जाती है, तो हम ये कर्मेंद्रियों को अपने ही शरीर में यूज नहीं करते। दूसरी चैतन्य व्यक्ति में हम आंख डाल देते हैं, कान लगा देते हैं, लीवर लगा देते हैं, हार्ट लगा देते हैं, वहां वो काम करता है, पर खुद के ही शरीर में आत्मा निकल जाने के बाद वो कोई कार्य नहीं करती। तो कर्मेंद्रियां चैतन्य आत्मा शरीरधारी बनती है, वहां वो कार्य करता है। इसलिए अंगदान, रक्तदान, आंखदान कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा तीन शक्तियों का समूह है, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीन शक्तियां मिला के आत्मा बनती है। आत्मा की संकल्प शक्ति, मनन शक्ति, विचार शक्ति को मन कहा जाता है। मन सोचने का कार्य करता है, मन विचार करता है, संकल्प चलाता है। इसलिए आत्मा की चैतन्य शक्ति, संकल्प शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, कल्पना करना। इस मनन शक्ति को हमें आवश्यक सोचना है, व्यर्थ अनावश्यक नहीं सोचना है। हम आवश्यक ही सोचते हैं कि अनावश्यक, बिन जरूरी, बिगर मतलब की कितनी बातें सोचते रहते हैं, ये व्यर्थ सोचना है। हम आपस में जब मिलते हैं तो तो हम तेरी मेरी करते हैं, हम दुनिया भर की बातें सोचते हैं, इसको अनावश्यक व्यर्थ सोचना कहा जाएगा। हम नकारात्मक सोचते हैं, एक दो के लिए भी सोचते हैं, समाज के लिए भी सोचते हैं, संसार के लिए भी सोचते हैं। तो हमें अपने चिंतन को सुधारना है। मन सोचता है, उसको हम चेक करें तो अनावश्यक व्यर्थ नकारात्मक कितना सोचते हैं, परंतु बहुत करके लोग अब सकारात्मक सोचना चाहते। लोग आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का टॉपिक जरूर मांगते हैं कि ये हम कैसे सोचें। तो आत्मा की विचार शक्ति को व्यर्थ या आवश्यक कहेंगे या सकारात्मक या नकारात्मक कहेंगे। हम अनेक विचार करते हैं, पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति जजमेंट पावर को बुद्धि कहते हैं। आपको निमंत्रण मिला, आपको विचार किया आपकी बुद्धि ने, जाएं कि न जाएं। हम जाएंगे, हमें कुछ सुनने को मिलेगा, कोई ज्ञान समझने को मिलेगा। तो आत्मा की इस निर्णय शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। हमें बुद्धि को शुद्ध बनाना है। हमारी बुद्धि कई बार मुंझ जाती है, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम निर्णय शक्ति हमारी खत्म हो गई है, हमारी बुद्धि शक्तिशाली नहीं रही है। हम गाते भी हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ऐसा आरती में भजन में हम गाते हैं। ये बताता है हमारी बुद्धि मुंझ गई है, निर्णय नहीं कर पाती है, ऐसा हमारी बुद्धि बन गई है। बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि को सुधारने की जरूरत है। और बुद्धि का दिव्यकरण करना है। बुद्धि स्कूल कॉलेज में पढ़ने से बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, परंतु बुद्धि का डिविनाइजेशन ये आत्मा करती है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है या उसका दिव्यकरण करना है, तो बुद्धि को हमें शुद्ध सत्य बनाना है। और बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। कर्म का प्रभाव स्वभाव कहा जाता है। वो बुद्धि में पूर्ण रूप से संस्कार का रिकॉर्ड होता है, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं। बार 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 वो ही कर्म करने से और उनका प्रभाव जो आत्मा में संचित होता है, वो संचित प्रभाव को रिकॉर्ड कर्म को हम संस्कार कहते हैं। तो विचार कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार ऐसे ही विचार हमें बार बार आते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और इस दुनिया की कमाई हुई, इकट्ठी की हुई कोई भी वस्तु हम नहीं ले जाते, परंतु जीवन भर किए हुए कर्म संस्कार के रूप में आत्मा अपने साथ ले जाती है। इसलिए जैसे संस्कार ऐसे आत्मा की गति होती है, और ऐसी ही पुनः जीवन स्थिति हमें प्राप्त होती है। कोई बच्चे का जन्म अभी तो कर्म शुरू भी नहीं हुआ, परंतु उनके अपने संस्कारों अनुसार, कोई गरीब परिवार में, चरित्रहीन परिवार में होता है। तो क्यों ऐसा है? पिछले जन्मों के कर्म, उनका प्रभाव आत्मा अपने साथ ले जाती है। जैसी प्रभाव ऐसी होती है, और पुनः जीवन स्थिति भी ऐसी ही मिलती है। तो आदि और पुनः जीवन स्थिति प्राप्त होने का भी आधार किए हुए कर्मों से अच्छे बुरे जो भी संस्कार बनते हैं, ऐसी जीवन स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो संस्कार आत्मा में संचित होते हैं, और संचित कर्मों अनुसार हमारे संस्कारों की स्थिति और कर्म की गति भी होती है। गीता में कहा है कि पवन जिस प्रकार के बगीचे से, फूलों से पास होता है, वो उनकी सुगंध अपने साथ ले जाता है। तो ऐसे ही हमारे जैसे संस्कार होते हैं, आत्मा की गति स्थिति ऐसी ही बनती है। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार का चैतन्य समूह है। मन और बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है, न कि आत्मा से अलग है। मन और बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है, वो शरीर का अंग नहीं है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है। मन बुद्धि के द्वारा जो कर्म फाइनल होते हैं, वो कर्म ही आत्मा की चैतन्यता है। आत्मा के ओरिजिनल गुण कौन से हैं? आत्मा के ओरिजिनल मूल सात गुणधर्म हैं। इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए न कि अशांति, सुख चाहिए न कि दुख, आनंद चाहिए न कि उदासी, हमें प्रेम चाहिए लेकिन हमें प्रेम की भाषा बहुत नहीं चाहिए। ये सातों ही गुण आत्मा में जब प्रधान रूप में है, प्रमुख रूप में है, तो आत्मा को सतो प्रधान, सप्त प्रधान कहा जाता है। धीरे धीरे आत्मा के ये सात गुण कम हो जाते हैं और उसकी जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ये गुण हमारे में ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम तमस प्रधान, तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा को ज्ञान मिलता है, संस्कार ज्ञान के मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ज्ञानी तो आत्मा बने। ज्ञान जब सत्य मिलता है तो हमारे में पवित्रता इमर्ज होती है। ज्ञान से पवित्रता आती है, इससे शांति और प्रेम उत्पन्न होता है, हमारा जीवन अच्छा बनता है। ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति और प्रेम आता है, इससे हमें सुख और पवित्रता जागती है, सुख आनंद उत्पन्न होता है। पवित्रता को शांति और प्रेम का जननी कहा जाता है, उसका जागरण होता है। और शांति और प्रेम आने से हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। हमें जीवन में ये जो सात गुण चाहिए वो हमें नहीं मिले हैं। हमें भौतिक चीजें मिली हैं, भौतिक साधन मिले हैं, पर ये सात गुण हमें नहीं मिले। हमें जो चाहिए वो नहीं मिला। शांति नहीं मिली है, प्रेम नहीं मिले हैं, सुख नहीं मिला है, हमें आनंद नहीं मिला है। इसलिए हमें ओरिजिनल गुण धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद मिल जाते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हमें जीवन में ये सात गुण चाहिए, परंतु ये ही हमें नहीं मिले हैं। जो नहीं मिला है वो पाने के लिए हम प्रयास करते हैं और जो चाहिए वो हमें नहीं मिला है। तो देखिए, ज्ञान, समझ, दिव्य बुद्धि से हमारे में पवित्रता आती है। हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं तो शांति और प्रेम आता है। घर में जब शांति और प्रेम का वायुमंडल बनता है तो हमें सुख और आनंद मिलता है। ये शांति और प्रेम आने से सुख और आनंद मिलता है और सुख और आनंद मिलने से हम शक्तिशाली, हिम्मत, साहसी आत्मा बनते हैं। तो ये सातों गुण आने से आत्मा को कहा जाता है सतो प्रधान। अब हम कहां से आए हैं, कहां जाना है? हम कहते तो है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, परंतु हम कहां से आए हैं, कहां जाना है? तो प्रकृति के पांच तत्वों से पार, छठवां तत्व अखंड लाल ज्योतिर्मय महातत्व है। परम धाम को कहते हैं परलोक, आलमे अरवाह, उसको ब्रह्मलोक, परलोक कहते हैं, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम कहते हैं। बौद्धिस्ट लोग इसको मुक्ति धाम कहते हैं, रूहों की दुनिया सोल वर्ल्ड कहते हैं, जिसको बौद्धिस्ट निर्वाण धाम कहते हैं, मूल वतन जिसको कहा जाता है। तो हमारा मूल वतन मुक्ति धाम, शांति धाम है। इस मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं। आत्मा को वहां शरीर नहीं है, इसलिए शरीर और आवाज से मुक्त मुक्ति धाम में वो रहती है। तो हम याद रखें, हमारा मूल वतन शांति धाम है, परम धाम है, शांति लोक चलता है। और नीचे है आसमानी रंग से जो बताया है वो स्थूल वतन। हम इस दुनिया में आकर शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण कर कर्म करते हैं। तो ये प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ साकार मनुष्य लोक है, जिसको स्थूल वतन कहते हैं। यहाँ कोई आत्मा नहीं रहती है स्थूल वतन में, यहाँ शरीरधारी आत्माएं रहती हैं। तो स्थूल वतन, बीच में सूक्ष्म वतन, जहाँ आकारी मनुष्य, आकारी देवताएं रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव, जब परमात्मा इस सृष्टि की त्रिदेव के समान रचना करते हैं, तब वो त्रिदेव की रचना करते हैं और उनके द्वारा फिर प्रजापिता ब्रह्मा तीन सूक्ष्मकारी देवताएं रहते हैं। परम धाम में, मूल वतन में देखो, आत्माओं के संग सबसे ऊपर परम ज्योति बिंदु, परम कल्याणकारी शिव परमात्मा सबसे ऊपर रहते हैं। तो आत्मा परम धाम से आई है, 84 का चक्र पूरा कर वापस परम धाम जाती है। तो हमारा असली घर परम धाम है, हमारा कर्म क्षेत्र स्थूल वतन है। इस कर्म क्षेत्र में 84 का चक्कर पूरा करते हैं, फिर हम अपने घर जाते हैं, वहां पिता परमात्मा के तरफ से हमें मूल वतन का घर मिलता है और हम घर जाते हैं। तो एक है परम धाम, दूसरा है देवलोक सूक्ष्म वतन, और दूसरा ये कर्म क्षेत्र है, ये सृष्टि नाटक है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हैं, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम परम धाम के निवासी हैं, और वहां हम अपने मूल स्वरूप 7 गुणों का स्वरूप रहते हैं। निज धाम निज स्वरूप गुणों का स्वरूप है। अभी हम आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं। बल आपको सोफा के बैक का, कुर्सी के बैक का सपोर्ट लेना है तो लीजिए, पर स्ट्रेट बैठिए। योग अभ्यास के समय आप स्ट्रेट बैठेंगे तो आपका ये आत्मचिंतन पूरे अंगों में पहुंचेगा। आत्मचिंतन के समय आंखें बंद नहीं करनी है, हमें आंखें खुली रखकर, नॉर्मल रखकर चिंतन करना है। हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, ऐसे जब आत्मचिंतन करें तो हम आंखें खुली रखे, नॉर्मल रखे, साधारण रहते, आंख बंद करके नहीं बैठना है, ना आंखें बंद करना है ना आंखें फाड़ के बैठना है, अपनी आंखें सिंपली खुली रखें। और जो भी चीजें आप लेके आए हैं, आप हैंडबैग लेके आए हैं, मोबाइल लेके आए हैं, पानी की बोतल लेके आए हैं, डायरी पेन लेके आए हैं, वो सब इकट्ठा करके नीचे रख दीजिए, कोई अटैचमेंट नहीं रखे, एक दो को भी अटैच होके नहीं बैठना है, एक दो से अलग अलग होके बैठना है, करके एक तरफ रखना है। तो देह से देह संबंधों से दैहिक डिटैच रहना। और मैं कमेंट्री दूंगी, चिंतन कैसे करना है वो विचार दूंगी, सजेशंस दूंगी, परंतु आपको ये मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन में रिवाइज करना है, उसका अर्थ समझकर रियलाइज करना है और अनुभव करना है। मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा परम धाम के निवासी हूं, परम धाम में मैं शरीर और प्रकृति के बंधन से न्यारी हूं, परम धाम में अखंड लाल ज्योति तत्व सर्वत्र छाया है, ये अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म लोक है, मैं उसमें ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा अलग रहती हूं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, चैतन्यता हूं, मेरा ये घर है, मैं इस दुनिया में पार्ट प्ले करने आई हूं, ये दुनिया फिजिकल है, पांच तत्वों की बनी हुई है, मैं आत्मा परम धाम से इस दुनिया में आकर पांच तत्वों का बना शरीर धारण कर कर्म करती हूं, मेरे लिए ये कर्म क्षेत्र है, ये सृष्टि रंगमंच है, ये सूर्य चांद सितारे इस दुनिया की लाइट है, मैं इस दुनिया में एक्टर बनके शरीर धारण कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। मैं आत्मा करता हूँ, भोगता हूँ। मैं इस दुनिया के पांच तत्वों से परे सूर्य चांद सितारों से भी परे अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में निवास करती हूँ। यहाँ मैं आत्मा शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, शांत हूँ। मैं मेरा स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सात गुणों का स्वरूप हूँ। सत्व प्रधान आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, सत्य हूँ, शांत स्वरूप हूँ। सत्व प्रधान हूँ। शांति।